नया चक्र। पंडित अभय कुमार जी देवला लेले दिन इपत्मूरू एर सवि हदिमूर सायंकाल ऐलूवरे गंटे
परिशिष्ट में 47 नयों का वर्णन है जो भगवान आत्मा में विद्यमान अनंत धर्मों में से 47 धर्मों के बारे में परिचय कराते। जैसे शक्तियां अनंत हैं लेकिन वर्णन मात्र 47 का ही हो पाया, उसी तरह धर्म भी अनंत हैं और वर्णन 47 का हो पाए। उनमें से अपन ने सप्तभंगी संबंधी और नाम स्थापना द्रव्य भाव ऐसे 4 निक्षेप संबंधी नयों की चर्चा की है। थोड़ी संक्षिप्त चर्चा सामान्य नये और विशेष नये और नित्य नये और अनित्य नये की करेंगे, फिर प्रारंभ करेंगे जो स्वपर प्रकाशक के विषय पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे ज्ञान के अद्वैत नये, द्वैत नये, सर्वगत नये, असर्वगत नये, शून्य नये और अशून्य नये, उनकी चर्चा मुख्य करना है। फिलहाल आप पेज नंबर 39 निकालें और ये 47 नयों के पहले जो बात कही है उसे तो टंकोत्कीर्ण हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बात प्रवीण जी? भगवान आत्मा चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है। आत्मा धर्मों में व्याप्त है और आत्मा को जानने वाला जो श्रुति ज्ञान है वो अनंत नयों में व्याप्त है। इस तरह आत्मा श्रुति ज्ञान प्रमाण का प्रमेय बनता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान भी अनंत नयात्मक है, आत्मा अनंत धर्मात्मक है। कैसी जोड़ी बनाई समझ, ज्ञान और गे स्वगे की, ज्ञान और स्वगे की क्या अद्भुत संधि है। भगवान आत्मा अनंत धर्मों में व्याप्त है लेकिन वो धर्म चैतन्य सामान्य से व्याप्त है। कोई धर्म अचेतन हो गए ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मनुष्य के सारे अंग भी मनुष्य रूप ही हैं, सिर भी मनुष्य जैसा होगा, हाथ भी होंगे, पैर भी होंगे, उंगलियां भी होंगी, समझ में आया? मनुष्य का अंग त्रयंच जैसे कैसे हो जाएगा? तो इस तरह आत्मा चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, भजन उस पर है। उनमें अपन सामान्य नये और विशेष नये की चर्चा करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना कि जिस नए नाम का नए है उसी नाम का धर्म वस्तु में कहा गया है, तभी तो नए का वो नाम दिया, नहीं तो काहे को देते। जैसे हम कहें हम सामान्य नए की चर्चा करेंगे तो आप ये समझना सामान्य नाम का एक धर्म, एक स्वभाव, एक योग्यता, उसकी चर्चा। तो देखिए आत्मद्रव्य सामान्य नए से हार माला कंठी के डोरे की भांति व्यापक है। ये और भी कई धर्मों में ये बात आ चुकी है, अविकल्प न विकल्प न, उसमें भेद के और अभेद की चर्चा थी, यहाँ व्यापक पने की चर्चा है। अब विभुत्व शक्ति और ये व्यापक स्वभाव उसका है। वास्तव में इसमें बहुत रिसर्च की, चिंतन की बहुत गुंजाइश है। 47 शक्तियों में, 47 नयों में, इन दोनों विषयों में कि कौन सा कहां मैच कर रहा है, कहां किससे अंतर है, वही विभुत्व शक्ति में वही बात है तो इसमें वही बात है तो क्या फर्क है। ये तो एक लोक में एक बात कही जाती है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। रजनी भाई अभी तो आपने अंगड़ाई ली है, अभी तो ये तो देवलाली में शुरुआत हुई है, आगे तो अज्ञान के विरुद्ध, मिथ्यात्व और कसाय के विरुद्ध जो लड़ाई गुरुदेव ने छेड़ी है, हर एक को अपनी अपनी लड़ाई स्वतंत्र लड़ना है। चर्चा तो सामूहिक होती है, पुरुषार्थ व्यक्तिगत होता है। तो आत्मदर्द में व्यापक होने का धर्म है, इससे वो गुण पर्यायों में व्याप्त रहता है, रहे ऐसी योग्यता है। एक और फार्मूला समझने लायक है, कोई भी शक्ति या धर्म या कोई भी पॉइंट जो आत्मा के बारे में है, हमें उसकी उपयोगिता समझना है, उसका महत्व समझना है, तो उल्टा सोचे कि नहीं होता तो क्या होता। अगर आत्मा गुण पर्यायों में व्याप्त नहीं होता तो क्या होता, तो ये गुण आत्मा का है, ज्ञान आत्मा का गुण है, ऐसा कैसे कह सकते थे? वो अनंत गुणों में व्याप्त है इसलिए वे गुण आत्मा के हैं, ऐसे कहा जा सकता है। और सारे बाकी के गुण अनात्मा हो जाते, उसके धर्म अनात्मा हो जाते, और विशेष नए से उसके एक मोती की भांति अव्यापक है। तो इस तरह व्यापकपना और अव्यापकपना दोनों स्वभाव भगवान आत्मा में है। ये सब तर्क नीचे इसमें दिए हैं मैंने, जो भी मैंने बोले हैं एक दो तीन पॉइंट में, ये सब दिए। खासकर इसमें से गुरुदेव ने क्या खास बात कही, 40 नंबर पेज पर निकालिए। वो जैसे मोतियों का हार है ना, तो धागा सब मोतियों में व्याप्त है, लेकिन एक मोती दूसरे मोती से जुदा जुदा है, एक मोती दूसरे मोती में व्याप्त, नहीं तो हार कैसे बनेगा? एक मोती का थोड़े हार बनेगा, हार के लिए तो 108 तो चाहिए चाहिए। ऐसी है बात भाई। अब देखिए गुरुदेव ने क्या निकाला, आत्मा अपनी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों पर्यायों में व्यापक है। इस शक्ति की शैली में और धर्म की शैली में ये अंतर, ये आगम शैली की प्रधानता है इसमें। तो इसमें जैसे प्रमाण का विषय के बारे में कहा गया था दोपहर में, तो पर से भिन्न बताएंगे तो अपना द्रव्यगुण पर्याय वो सब अपना ही है, फिर अपना दोष भी अपना है, अपना नहीं हो तो उसको दूर कौन करेगा? वो दोष दूर करने के लिए पुरुषार्थ हम क्यों करेंगे यदि वो दोष हमारा ना हो? हमारा है और दोष है, क्या कहा? हमारा है और दोष है, विभाव है, औपाधिक भाव है। वो तत्वासूत्र की शैली में जिसको स्वतत्व कहा है। तो आत्मा अपनी मिथ्यात्व और सम्यक्त दोनों पर्यायों में व्यापक है, इसका अर्थ क्या है कि इनके स्वकाल में इन पर्याय रूप में परिणमन करता है। व्यापक कर दे, व्याप्य व्यापक भाव से ही कर्ता कर्म भाव होता है ना, तो व्यापक यानी फैलने वाला, प्रसरने वाला, सब में हाजिर रहने वाला। तो अगर वो आत्मा अपनी पर्याय में हाजिर नहीं रहेगा तो उसका कर्ता कैसे होएगा? इस न्याय से बिना विकार और स्वभाव का फर्क डाले अपनी समस्त पर्यायों का कर्ता आत्मा है। अभी आगे कर्ता नहीं भी आएगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। परंतु एक पर्याय दूसरी पर्याय में व्यापक नहीं, एक गुण दूसरे गुण में व्यापक नहीं है, मोतियों की भांति। तो गजब है, आत्मा में द्रव्य दृष्टि से देखो तो व्यापक होने का धर्म है, और भेद दृष्टि से, गुण भेद दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से देखो तो वो एक एक दूसरे से जुदी है। जुदी का मतलब सत्ता भिन्न है ऐसा नहीं है, लेकिन उनका नाम पंडित जी ने लिखा ना, टोडरमल जी ने, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा भिन्नता कही जाती है। यदि मिथ्यात् पर्याय आगामी सभी पर्यायों में व्यापक हो जाए तो मिथ्यात् का अभाव कभी नहीं हो सकेगा, वो आगे आगे फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। इसलिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है, वर्तमान पर्याय भूतकाल में और भविष्य काल में प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है ही नहीं, उसका स्वरूप ही नहीं। द्रव्य में चली गई पारिणामिक भाव की योग्यता से, वो तो द्रव्य बन गई, अब वो पर्याय रही कहां? वो तो उसको आप समझ लो भूत निगम ने से पर्याय नाम देते, पहले पर्याय रूप में थी और अब वो योग्यता द्रव्य। योग्यता का मतलब ये कि द्रव्य इस सात काल में इस पर्याय रूप परिणमित हुआ था, ये बात उसकी हिस्ट्री में से कभी बाहर नहीं निकल सकती। इसके लिए समझ लो अच्छी कल्पना है, उदाहरण बढ़िया है, पौराणिक है, मारीची का आत्मा भगवान महावीर का आत्मा, और मारीची के भाव में उसने जो कुछ भी किया उसका फल उसने एक कोड़ा कोड़ी सागर भोग लिया। अब वो टाइम भी पास हो गया, अब तो फाइल खत्म हो गई, फिर उसने सम्यक दर्शन ले लिया, फिर आत्मा में लीनता कर ली, चारित्र प्रकट कर लिया, फिर समझ लो अरहंत बन गए और अब सिद्ध बन गए। तो अब वो कोई मारीची पर्याय की गंध उनके अंदर कहीं बैठी है? वो मिथ्यात्व की, वो दुख की जो एक कोड़ा कोड़ी सागर दुख भोगे, दुख तो अनादि से भोगे सबने, तो क्या वो उनकी गंध अभी बैठी है सिद्ध दशा में? कुछ नहीं है अभी, वो भूतकाल की पर्याय वर्तमान में नहीं है, ख्याल में आया ना। लेकिन जो त्रिकालवर्ती, जो महावीर भगवान का केवल ज्ञान त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानता है कि नहीं जानता, यानी उनका अगर हिस्ट्री निकाली जाए, केवल ज्ञान में तो हिस्ट्री निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो निकली निकलाई है, लेकिन पुराणों में आचार्यों ने जो उनकी हिस्ट्री निकाली, तो ये जीव भरत का पुत्र था और उसने ऐसा किया था, इसने ऐसे एकांत मत चलाए थे, इसने वो बात उस द्रव्य के इतिहास में से कट नहीं हो सकती,
कभी भी नहीं,
वो डिलीट नहीं हो सकती वो बात, वो उस पर्याय का कोई असर नहीं है। लेकिन अब त्रिकाल द्रव्य के त्रिकालवर्ती स्वरूप को देखेंगे और पर्यायों सहित देखेंगे, समझ में आया ना, तो वो पर्याय आज भी भगवान को अपने ज्ञान में उस काल में खड़ी हुई दिखाई देती है। ये इसलिए प्रवचन सार में भूत और भविष्य की पर्यायों को भी कथनचित सत कहा है, और सत का उत्पाद कहा है, सत उत्पाद असत उत्पाद दोनों की चर्चा बहुत बढ़िया है। तो इस तरह मिथ्या पर्याय दूसरी भविष्य की पर्याय में व्यापक नहीं होती, ऐसा अव्यापक नाम का धर्म है, वस्तु में स्वभाव है, तो ये बहुत बढ़िया है। तो मिथ्यात से मुक्त होने की गुंजाइश हमारे स्वभाव में पड़ी हुई है। और इसमें नीचे प्रश्न भी है कि भाव नय द्रव्य नय और सामान्य नय में क्या अंतर है, ये सब इसमें है, वो आप इसमें से देख लेना, मुझे आगे बढ़ना है। पेज नंबर 141, नित्य नय और अनित्य नय, ये बहुत इजी है। आत्म द्रव्य नित्य नय से नटकी भांति अवस्थाई है, इसके लिए नीचे एक समझ लो समय सार कलश का उदाहरण दिया है। नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, तो नव तत्व स्वांग है, समझ में आया ना, तो अनित्य नय से राम रावण की भांति अनवस्थाई है। अनवस्थाई माने चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, जैसे कोई उन्होंने उदाहरण भी दिया ना नटकी भांति, हाँ नटमंड जो खेल दिखाते हैं, वो रस्सी बांध लेते हैं, रस्सी के ऊपर चलते हैं, तो वो एक एक एक्शन उसका पल पल चेंज होता रहता है, लेकिन व्यक्ति वही का वही रहता है। ऐसे आत्मा नौ तत्व रूप परिणमता है तो वो स्वांग बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही का वही रहता है। एकत्वम न मुंचति, एकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता है, ये उसका नित्य नय वाला धर्म है, ये उसकी नित्यता है, ध्रुवता भी कह सकते हैं। ध्रुवता की एक बहुत बढ़िया परिभाषा आई प्रवचन सार में, स्वभाव से अच्युति को ध्रुव कहते, स्वभाव से च्युत नहीं होना उसका नाम है ध्रुव, ख्याल में आया ना। तो इस तरह वो ध्रुव है, नित्य है, एक रूप है, अपने स्वरूप में है, लेकिन उसमें परिवर्तनशीलता भी है। ये द्रव्य दृष्टि से नित्यपना और पर्याय दृष्टि से अनित्यपना, ये वस्तु के स्वरूप में शामिल है। अब देखिए अनित्यता वो दोष नहीं है, वो विकार नहीं है, वो स्वभाव है। और अनित्य धर्म कौन सा भाव है, पांच भावों में अनित्य धर्म कौन से भाव में जाएगा? कर्म के उदय से होता है, उपशम से होता है, क्षय से होता है, क्षय उपशमता से होता है, कोई संबंध नहीं कर्म से। तो वो पारिणामिक भाव रूप है, गजब बात। कभी कभी गुरुदेव के प्रवचन में ये बात बहुत आती है, अनित्य स्वभाव अनित्य धर्म वो भी नित्य है। क्या बोला? नित्य माने एक रूप रहने का जो नेचर है वस्तु का, वो अनादि अनंत है, इसलिए वो आत्मा नित्य है। तो नित्य धर्म तो नित्य है ही, वो सदा रहता है, लेकिन प्रति समय आत्मा में उत्पाद वे रूप पर्याय होती रहे, अवस्थाएं बदलती रहे, स्वांग बदलते रहे, ये सिस्टम कब बंद होएगा? सिद्ध में भी हो जाएगा बंद। अरे सिद्ध में भी उत्पाद वे होता है, मोक्ष में भी दूसरा स्वांग, दूसरे क्षण दूसरा स्वांग, नया नया केवल ज्ञान, नया नया अनंत सुख ख्याल में है ना। रसपान करो शिव गगरी में, तो नया नया आनंद प्रति समय नया पैदा करते, नया पीते। तो वो पर्यायों के बदलने की व्यवस्था द्रव्य में कब समाप्त तो हो जाएगी? कभी नहीं होगी पक्का। तो अनादि अनंत है, तो अनित्य धर्म भी कैसा हुआ? अनादि अनंत, अनित्य स्वभाव की बात है। पर्टिकुलर एक पर्याय बदल जाती है तो पर्याय तो नष्ट हो जाती है, लेकिन बदलने का स्वभाव कभी बंद नहीं होता। समझ में आए ना? इस न्याय से अनित्यता भी नित्य धर्म की भांति त्रिकाली स्वभाव है, वस्तु का बुरी चीज नहीं है। रातों के पर्याय का लक्ष्य छोड़ना, द्रव्य का लक्ष्य करना, अरे पर्याय द्रव्य में अहम करती है, मैं ज्ञायक हूं, क्योंकि ज्ञायक उसका त्रिकालिक स्वरूप है और वो एक पर्टिकुलर एक पर्याय तो नष्ट हो जाने वाली है, तो उसका लक्ष्य तो छोड़ने ही जैसा है, उसमें क्या बड़ी बात। समझ में आया? और जिस ज्ञायक का, जिस भगवान आत्मा का अवलंबन करना है, वो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है, वो भगवान आत्मा धर्मी है, वो चैतन्य स्वाभाविक वस्तु है, तो वो बात तो बहुत चलती है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो आप कहोगे अनित्यता कोई दोष है या कोई विकार है, ऐसा नहीं, वो भी वस्तु का स्वरूप है, स्वभाव है, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, ऐसे। बाकी सवाल इसमें देख लेना, इसमें प्रवचन सार को भी कोट किया है, 114 गाथा की टीका में आत्मा की नित्यता और अनित्यता समझाई है। तो दिव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा खुली रखो तो आत्मा कैसा दिखेगा, तो पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा खुली रखो और दिव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद रखो तो कैसा दिखेगा, तो नर नारक आदि पर्याय वाला दिखेगा, और प्रमाण से देखो तो कैसा दिखेगा। ये तीन बोल 114 गाथा की टीका में। अब अपन प्रारंभ करते हैं सर्वगत नय और असर्वगत नय। पहले अपन ये तीनों जोड़ों का स्वरूप जो इसमें बोल्ड टाइप में दिया है वो पढ़े लेते हैं। पेज नंबर 42। आत्मद्रव्य सर्वगत नय से खुली हुई आंख की भांति सर्ववर्ती है, आंख का उदाहरण दिया है। लोग कहते हैं हमारी नजर सब पे रहती, क्या अर्थ है? आंख निकल के उधर चली जाती, नजर सब पे रहती का क्या मतलब है? वो प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है ना अपने यहाँ, तो उसमें बच्चों को शुरुआत के 2-3 दिन में ही पढ़ाते हैं अध्यापक में क्या क्वालिटी होने चाहिए, छात्रों पर नजर होनी चाहिए, कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। तो हमारी नजर सब पर रहती है, इसका अर्थ क्या है? हमारे ज्ञान का विषय वो बनता है, वो नजर निकल के चली जाती है, ऐसा नहीं, पकड़ है उसकी। हमारे जहां जबलपुर में जहां रहते थे वहां हमारे एक पड़ोसी थे, उनने हमको बचपन से भगवान की पूजा करना सिखाया, बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत छोटी उम्र में, बहुत 10-12 वर्ष की उम्र में, वो धोती दुपट्टा पहना के ये याद कर लो और ये याद कर लो, ऐसा हमको थोड़ा रस भी था। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, तो जब भी किसी से अगर कोई विवाद हो जाए ना तो वो उसको चैलेंज करते, देखो हम जब तक चुप हैं तब तक चुप हैं, लेकिन जब हाथ ऊंचा करते हैं तो वो इंदिरा गांधी तक पहुंचता है। विष्णु कुमार ने ऐसी प्रक्रिया दी है क्या? वहां तक पहुंचने का अर्थ क्या है? लोक में भी अपन कहते कि नहीं इसकी पहुंच ऊपर तक है, तो क्या मतलब शरीर से पहुंचता है, पहचान से, ज्ञान से, परिचय से, यानी ज्ञान ही पहुंचता है। ये अन्य दर्शनों में जो विष्णु की कल्पना की गई है लोकव्यापी है, सर्वलोकव्यापी है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, कहां ईश्वर नहीं है, ये सब जो है ये उन्होंने ज्ञान को ही एक एक द्रव्य सत्ता मान के और सर्वव्यापी का रूप में एकांत पकड़ लिया। ख्याल में आया ना? एकांत अपने यहां ज्ञान की अपेक्षा लोकालोकव्यापी। देखो एक इसमें शायद दिया है प्रवचन सार गाथा 23 का, इसमें उल्लेख मात्र किया है, चौथे नंबर में देखो, अन्य मत में विष्णु को सर्वव्यापी कहा गया है, परंतु आत्मा अपने ज्ञान द्वारा लोकालोक में व्याप्त होता है। आदाणान प्रमाणम राणम नेय प्रमाण मुद्दिठम नेयम लोया लोयम तम आदादु सर्वगतम। आत्मा सर्वगत है, किस अपेक्षा? ज्ञान की अपेक्षा। सावधान रहना, अभी घबराना नहीं। किसी को ऐसा लगे दोपहर में कुछ बताते हैं, शाम को कुछ, कोई पंडित कुछ कहता है, कोई पंडित कुछ कहता है, इन लोगों में कोई ठिकाने नहीं, पब्लिक बेचारी कंफ्यूज है, हम क्या करें। ये तो आप अकेला गुरुदेव को सुनोगे ना, तो सुबह समय सार सुनना। हमारे साथ ऐसे ही हुआ, जब हम पहली बार सोनगढ़ गए सन 1968 में, तो उस बच्चों के शिविर का समय था वो, और कुदरती गुरुदेव उस समय हिंदी में व्याख्यान करते थे, तो हमको अनुकूल पड़ता था। तो सुबह चलता था समय सार कलश टीका, और शाम दोपहर में चलता था मूल समय सार ग्रंथ। तो समय सार कलश में तो ये आ रहे कि राग का कर्ता आत्मा है, ख्याल में आया ना, आत्मा ने राग किया, वो वाले कलश चलते थे उसमें। और दोपहर में ये 73, 74, 75, 76, 77 गाथाएं चलती थी। तो दोपहर में बोले राग पुद्गल का है। मैं सच कहता हूँ, मुझे बारंबार ये विकल्प आए कि इनको सुबह की बात दोपहर में याद रहती कि नहीं रहती। ये सुबह कुछ और मजे की बात, ये है आश्चर्य की बात, आनंद की बात, गुरुदेव की शैली का मार्मिक पहलू, कि जब वो राग का कर्ता आत्मा स्वयं है ये बात कहें, तो भी आ हा हा हा, दिगंबर संतो ये गजब काम करी छे। और जब राग का कर्ता पुद्गल है, राग पुद्गल का है ये बात कहें, तो भी वही आ हा हा वही निकल। दोनों में सेम रिएक्शन, यानी उनकी दृष्टि उसमें से भी द्रव्य स्वभाव की पुष्टि करती और उसमें भी करती। तो खुली हुई आंख की भांति सर्ववर्ती है, वर्ती का अर्थ जानने की अपेक्षा लेना है, और असर्वगत नय से बंद आंख की भांति अपने में रहने वाला है। अभी दोपहर में एक बात आई थी, जब वो लड्डू वाला प्रकरण आया था ना, आज तो लड्डू बहुत खाए सबने, हमारे राकेश जी तृप्त नहीं हुए, तो उन्होंने कहा वो बाद में दोबारा क्यों नहीं आया वो लड्डू वाला। तो एक बात आई थी, उदाहरण एक देश लागू होता है, ये नियम है। तो बंद आंख की मतलब बंद ज्ञान की बात ही, खुली आंख में तो आपने ज्ञान लगा लिया, और बंद आंख में क्या लगाओगे? उसमें प्रदेश दिया। प्रदेशों में तो वो अपने असंख्य प्रदेशों में ही ज्ञान रहता है, और प्रवचन सार के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान और ज्ञेय के अन्योन्य प्रवेश का बहुत दृढ़ता से निषेध किया गया है। ख्याल में आया, अन्योन्य प्रवेश माने ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं, ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं। मैं बारंबार ये अपील आप लोगों से करता हूं, सभी से, स्वाध्यायियों से, विद्वानों से, चिंतकों से, जहां जहां आपको ये मिले कि आत्मा पर को नहीं जानता, पर संबंधी अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है, ये सैकड़ों जगह, हजारों जगह मिलेगा, ख्याल में आया ना। जो उसकी व्याख्या गुरुदेव करते हैं, तो कौन से पॉइंट खड़ा करते, पर ने लई ने ज्ञान था एम नथी, पर पदार्थ ज्ञान में प्रवेश करे छे ज्ञेय ज्ञान में आवी जाए एम नथी, ख्याल में आया ना। यानी वो ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता, ज्ञान और ज्ञेय की निरपेक्षता, और ज्ञेयाकार प्रणमन वो ज्ञान ही है, ज्ञेय नहीं, जिसकी बात आज चली थी, वो इसकी व्याख्या करते, मतलब उसमें से यही समझाना चाहते, ज्ञेयाकार प्रणमन का निषेध नहीं है, उसको ज्ञेय नाम देना व्यवहार है, ज्ञान को ज्ञेय नाम दे रहे। अरे जब अपन पत्थर के हाथी को हाथी कहते कि नहीं कहते, कि कोई कहता है पत्थर मंदिर के सामने वो क्या लगे हैं गेट पे, सीढ़ियों के पास में है ना, क्या है पत्थर है कि हाथी है? अरे पत्थर का हाथी। यानी उसको भी देखने की दो दृष्टि, उसने हाथी जैसे आकार का पत्थर बना दिया कलाकार ने, उसी तरह ज्ञान ने अपनी कला से गे जैसा अपना आकार बना लिया, समझ में आए ना, तो ये व्यवस्था है उसमें। तो खुली आंख में ज्ञान लिया और बंद आंख में प्रदेश लिए। और जो एक पंक्ति किसी भाई ने कही भी थी, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, वहां तो उपयोग अपने आत्मा में लीन है, उपयोग पर सन्मुख नहीं होता। जब छन्मस्त का उपयोग पर सन्मुख हुए बिना गे को ग्रहण नहीं कर पाता, ये छन्मस्त के ज्ञान की वीकनेस, उसको पर सन्मुख होना ही पड़ता है। उपयोग जैसे मति ज्ञान उपयोग, श्रुति ज्ञान उपयोग, केवल ज्ञान तो खैर सूर्य जैसा है, वहां तो लब्धि और उपयोग का भेद ही खत्म हो गया, एक अपेक्षा कहा जाए। यद्यपि सिद्धांत में उसे भी उपयोग कहा है, ये हमारे जैसा वो उपयोग घूमता नहीं है इधर उधर, है केवली का तो स्थिर होकर के जानता है। तो भी मन पर ज्ञानी को मन पर ज्ञान का उपयोग लगाना पड़ता है। वो पंच कल्याणक में जब जन्म कल्याणक होता है तो हम लोग एक समझ लो रूपक प्रस्तुत करते, नाटक कहना तो अच्छा नहीं लगता। सौ धर्मेंद्र अवधि ज्ञान से जान रहे हैं कि ये सिंहासन क्यों हिल रहा है, दिव्य प्रकाश क्यों फैल रहा है, तो वो ऐसा करके सोचते। तो हमारे कार्यकर्ता उनको ऐसा सिखा देते कि आप लोग आप उस समय ऐसा करके सोचना। तो कभी कभी मुझे भाव आ जाता है तो मैं कह भी देता हूँ कि सौ धर्मेंद्र भी ऐसे ही माथे पे उंगली लगा के सोचते होंगे। ये हमारे पास क्या उपाय है बताने का, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान जो उनके क्षयोपशम लब्धि में धारा बह रही है, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम तो निरंतर बना रहता है, देवों को ख्याल में आया ना, और जिनको भी अवधि ज्ञान है उन सबको, लेकिन उपयोग तो हमेशा नहीं रहता, उपयोग तो मति श्रुत में ही ज्यादा जाता है। जब ऐसे कोई केस होते हैं तब उसका यूज करते हैं, तो अवधि ज्ञान में उपयोग लगा के जान लेते तो उपयोग लगाना पड़ता है। फिर ये बात कहां से आ गई कि गेयों के ज्ञायक हैं, यानी ज्ञान सर्वगत है लेकिन चैतन्य रस में ही लीन है। यद्यपि यहां प्रदेशों की बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात इसमें एडिशनल कहना चाहता हूं कि जो असर्वगत पना जो है उसको उन्होंने प्रदेशों की अपेक्षा लिया कि आत्मा अपने प्रदेशों से बाहर नहीं निकलता, तो ज्ञान भी नहीं निकलता, ज्ञान की पर्याय भी नहीं निकलते। अपन लोग कहते हैं हमारा उपयोग पर में चला जाता है, बहुत से लोग जो अपने एकाग्रता का सामायिक का अथवा यूं कहो ध्यान का अभ्यास करने के लिए बैठते हैं और फिर ये समस्या भी आ जाती है, साहब ध्यान करने बैठते हैं उपयोग तो पर में चला जाता है। तो मैं उनकी बात का कभी इस रूप में जवाब भी देता हूँ, स्वयं भी विचार करता हूँ कि तुम उपयोग को देख के बताओ कि वो कहाँ चला जाता है। पर में चला गया इसका मतलब समझते हो, पर में चला गया क्या मतलब पर हो गया रमेश भाई, तभी तो पर हुए पर में चला जाएगा तो उपयोग कहाँ रहा, आग जल रही है और हमारा उपयोग आग में चला गया, ऐसा बोलो आप। अरे उपयोग भाई साहब क्षेत्र की अपेक्षा भी अपने असंख्य प्रदेशों में ही रहता है और भाव की अपेक्षा अपने उपयोग स्वभाव में ही रहता है, उपयोग उपयोग में है क्रोध में नहीं है ना अपनी गाथा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव तीनों को देखना, तो आत्म द्रव्य से बाहर पर द्रव्य में नहीं जाता, असंख्य प्रदेशों से बाहर नहीं जाता, अपने जो पर्याय उपयोग के प्रकट होने का स्वकाल है उस काल के अलावा अन्य कालों में वो नहीं रहता, यानी प्राग भाव और प्रध्वंस भाव जो है वो उस उपयोग स्वकाल में ही परिणमित हुआ है। तो काल उसका स्वयं का है और भाव माने उपयोग में जो जानने का स्वभाव है उसको छोड़ के उपयोग कहां गया, लेकिन बोला ऐसे ही जाता है कि उपयोग पर में चला जाता है, लक्ष्य पर की ओर चला जाता है, पर की ओर चला जाता है तो वो तो दिशा आपकी उधर हो गई, लेकिन पर में तो कभी जा ही नहीं सकता, ख्याल में आया ना। इस हिसाब से भी आत्मा असर्वगत है, क्या कहा प्रदेश की अपेक्षा तो है ही है, उसमें तो कोई शंका है ही नहीं, वो बात तो बहुत इसमें कही है, लेकिन क्या उपयोग अपना उपयोग पना छोड़कर पर में जाता है, नहीं जाता, तो कहीं नहीं जाता, उपयोग कहीं जाते ही नहीं है उपयोग के अलावा, समझ में आया, इसलिए भी वो असर्वगत है, कहीं नहीं जाता, अपने में ही रहता है। अपने में रहना का जो धर्म है उसका नाम है असर्वगत स्वभाव, और संपूर्ण ज्ञेयों को जानने का जो स्वभाव है उसका नाम है सर्वगत स्वभाव। ये ज्ञान की तरफ से बात हुई कि ज्ञान ज्ञेयों में जाता है या नहीं। ये अपने यहाँ तो ठीक है, अपने तो इतने चलते हैं, समझ लो भिन्न भिन्न शैली के विचार, भिन्न भिन्न मतभेद में नहीं कहना चाहता, भिन्न भिन्न शैली के विचार, लेकिन सबका आधार एक जिनागम है, एक गुरु है, समझ में आया ना, इसलिए अपने आप की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक मनोविज्ञान और काम करता है, वो मैंने नए रहस्य में लिखा है कि वक्ता जो बोलता है तो वो किस बात को मुख्य करे और किसको गौण करे, ये नयों के सामान्य स्वरूप में है कि नए में क्या है, एक धर्म को मुख्य करते बाकी को गौण करते, तो कौन मुख्य गौण करेगा, या तो ज्ञाता यानी जानने वाला या वक्ता। तो अपन वक्ता की बात करें तो वो किसे मुख्य करेगा, ऐसा लगता है कि वक्ता को बहुत छूट मिल गई है, तुम तो बैठ जाओ गद्दी पे, अब तुम्हारा एक घंटा, तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम किसी को मुख्य करो चाहे किसी को गौण करो। ऐसे बलि राजा को 7 दिन का राज दे दिया हो, ऐसे वक्ता को 1 घंटे का राज मिल गया, ऐसी स्वाधीनता नहीं है। उसका मनोविज्ञान श्रोताओं की मान्यता से प्रभावित होता है। व्यवहार की बात कहता हूं, क्या विषय लेना, इस बारे में मुझे खिमचंद भाई बहुत याद आते हैं। एक बार जब हमारी उनसे चर्चा बहुत होती थी राग पुद्गल का है कि जीव का, तो उन्होंने एक घटना सुनाई कि वो राजकोट गए, वहां उन्होंने सभा में सबसे प्रश्न पूछा कि राग किसका है, जीव का कि पुद्गल का, तो सबने कहा पुद्गल का। जीव में होता है, जीव उसका करता है, जीव की योग्यता से हुआ है, ये बात लोगों के दिमाग में मतलब प्रतिष्ठित ही नहीं हुई, इस पर लक्ष्य ही नहीं गया। बोले मैं 15 दिन वहां रुका और मैंने राग जीव में होता है ये विवक्षा से प्रधानता से वहां व्याख्यान किए। आप देखिए गुरुदेव के समय में पूरी समाज का, चाहे वो स्थानकवासी हो चाहे सीताम्बर हो चाहे दिगंबर, समाज का माहौल क्या था, क्रिया कांड वाला, कहीं व्रत उपवास कर लो तो धर्म हो गया, यहाँ प्रतिमा ले लो, नग्नता आ जाए तो धर्म हो गया, वहां कहीं मंदिर बना लो, दान दे दो तो धर्म हो गया, यानी उन्हें सब जगह ये भयंकर क्रिया कांड ही मिला धर्म के नाम पे। तो उनका पूरा जो पौरुष है उस क्रिया कांड में धर्म मानने के निषेध में ही समर्पित हुआ, ख्याल में आए ना, आप कल्पना करो। और कभी कभी जब वो व्यवहार में कोई शिथिलता देखते थे तो उस पर भी कितना प्रहार करते थे, समझ में आए ना। तो कहने का आशय ये है कि कौन किस धर्म को मुख्य बना रहा है, कौन किस पॉइंट को मुख्य करता है, ये उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, उसमें पक्षपात है, उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये हो सकता है उसके दिमाग में श्रोताओं की ये इमेज हो गए कि ये लोग एक्स की तरफ ज्यादा झुकते हैं तो वो वाई की बात करेगा, वो ये सोचेगा ये लोग वाई की तरफ ज्यादा झुकते हैं तो एक्स की, उसका प्रयोजन श्रोताओं का उस विषय संबंधी अज्ञान दूर करने का, इसलिए वो वक्ता बन के बैठा है। खैर अपने, ये तो अपने माहौल की बात की, अन्य दर्शनों के सामने आचार्य को बहुत फेस करना पड़ता था, अन्य दर्शनों के, बौद्धों की व्यवस्था क्या है, वो ज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं, वेदांत क्या सोचते हैं, और अन्य अन्य मत में नई आई क्या सोचते हैं, उनके ग्रंथ भी थे और उस जमाने में वाद विवाद भी बहुत चलता था, अकलंक देव तो घूमते ही थे, समंत भद्र स्वामी तो वादार्थी विचरामे हम नरपते शार्दूल विक्रीडितम, ऐसा उनका श्लोक भी आता है। तो उसके सामने भी ये बातें आई हैं सब उनके सामने, उन्होंने कहा आपके यहाँ ज्ञान बौद्ध मानते ज्ञान जिस गेय में जाएगा उसे जानेगा, और जिस गेय को जानेगा उससे ही ज्ञान पैदा होगा और उसी रूप हो जाएगा, तदुत्पत्ति तदव्यवसाय और तद्रूपता, ये तीन सत्तदाकार तद्रूप तदाकार, ये तीन चीजें बौद्धों के यहाँ आती। तो आचार्य देव ने कहा ऐसा नहीं है, ज्ञान गेय से उत्पन्न होता नहीं है, गेयों में जाता नहीं, इसका नाम असर्वगत नय, समझ में आया, असर्वगत नय ज्ञान का स्वरूप बताने के लिए तो खड़ा हुआ ही है, सामने वाले को भी बताएगा आप सोचते हो ज्ञान गेय में चला गया, और देखो अगर हम भी ऐसे ही महसूस करते हैं कि हमारा ज्ञान गिरी में चला जाता है, उपयोग पर में चला जाता है, तो हम बौद्ध मतानुयायी जैनी हो गए। जैनी जन्म से और अभिप्राय से बौद्ध मतानुयायी हो गए। तो जानने की अपेक्षा मानो, क्या दिक्कत, अपेक्षा लगाओ। एक और बढ़िया बात है, बड़ी लंबी लंबी बहस चलती न्याय ग्रंथों में, तो कभी कभी जब हम लोग आप तो परीक्षा पढ़ते थे तो उसमें एक ऐसा वाक्य आता है, तो अगर हम इस अपेक्षा से ये बात स्वीकार करें तो कोई भी प्रसंग होवे, 10-20-50 पेज की बहस हो जावे, तो आचार्य उसकी तरफ से लिखते, सामने वाला जो है प्रतिवादी, अगर हम ये बात इस अपेक्षा से माने तो आचार्य कहते इससे बढ़िया क्या हो सकती, तुमने अपेक्षा मान ली माने तुम जैनी हो गए। समझ में आया, सापेक्ष कथन तुमने स्वीकार किया ना, तब तुम जैन। हम यही तो कहते हैं स्यादवाद से मानो। तो ज्ञान लोकालोक में व्याप्त होता है, ये जानने की अपेक्षा है। और एक बात, वो वाला तो बाहर का लोकालोक है जिसमें ज्ञान जाता नहीं है लेकिन जानता है, इसलिए व्याप्त कहा। उस लोकालोक के निमित्त से अपने अंदर एक लोकालोक बनता है केवल ज्ञान में, उस लोकालोक में तो व्याप्त होता ही है, तभी तो उस लोकालोक को जानता है। ऐसी बात है भाई। अब फिर दूसरा जोड़ा आया, शून्य नये और अशून्य नये, ये है गे की तरफ से। पहला बोल कौन सा है, ज्ञान की साइड से, कि ज्ञान गेयो में जाता है या नहीं। और अब प्रश्न है कि गे ज्ञान में आते हैं या नहीं। आप 200 नंबर की गाथा पढ़ो प्रवचन सार की, कई लोगों ने यहां दोहराई, मानो वे ज्ञान में डूब गए हो, क्या होते हैं, उत्कीर्ण हो गए हो, समा गए हो, ज्ञान ने उन्हें पी लिया हो। लघु तत्व स्फोट में तो गजब के ऐसे, मेरे ख्याल से 625 में से कम से कम 100 छंद तो ऐसे मिलेंगे जो ज्ञान के इस खूबी को बताने वाले हुए। 37वीं गाथा अपने यहाँ समय सार में, उसकी टीका में भी इसी प्रकार के भाव। तो गे तो ऐसा लगता है ज्ञान में बैठे ही हुए ध्यान में आए ना, तो वो अशून्य धर्म का प्रयोग है। और ज्ञान को ज्ञान की तरफ से देखो तो एक परमाणु भी ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, तो ज्ञान बिल्कुल खाली है, माने वो शून्य स्वभाव वाला है। ऐसा देखो, आत्मद्रव्य शून्य नय से खाली घर की भांति अकेला भाषित होता है। आज अगर मैं नए लिखूं तो मैं उदाहरण बदलूंगा और मैं लिखूंगा, मोटानी जी हैं, देवलाली के बंगलों की भांति खाली भाषित होता है। कह देना उनको भाई उधर आवाज थोड़ी जा रही है, स्पीकर थोड़ी चालू है, सुमन भाई ने सुन ली। खैर ये तो एक संकेत मात्र है, थोड़ा कहा बहुत जानना। एक खाली घर में क्या कोई चीज हमेशा खाली हो ही सकती है सर्वथा? अरे कुछ नहीं तो हवा तो भरी होगी उसमें, ख्याल में आए ना। लेकिन अपेक्षा लगाओ कि उसमें कोई रहता नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो इस हिसाब से खाली है। कोई तो आपके बंगले में ठहरना खाली पड़ा है, आप ही का है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ख्याल में आए ना। ऐसे ज्ञान गेयों से खाली है, जानता है लोकालोक को, लेकिन एक भी गे कभी भी ज्ञान में प्रवेश ना करे, ऐसे स्वभाव का नाम शून्य धर्म। क्या कहा, शून्य में। अच्छा तो ज्ञान में ज्ञान तो है ही, तो ज्ञान है उसको कौन मना करता है, लेकिन ज्ञे नहीं है इसलिए कहते हैं कि ज्ञान शून्य है। और अशून्य नय से लोगों से भरे हुए जहाज की भांति मिलित भाषित होता है, जिसको राकेश जी ने कहा था ना, वो कलरफुल है, चित्र विचित्र है, ज्ञान में चित्र विचित्र बनते, ज्ञे आकार है वही ज्ञान का चित्र है। इसको अगर आज के संदर्भ में उदाहरण दिया जाए, उस जमाने में समुद्र में जहाज चलते होंगे और लोग उसमें भर भर के जाते होंगे, आज भी जहां व्यवस्था है जाते हैं, आज के हिसाब से तो मुंबई की लोकल ट्रेन की भांति मिलित भाषित होता है। तो देखो ये गे की साइड से, ज्ञान गे में है या नहीं, तो सर्वगत और असर्वगत आया। ये ज्ञान में है या नहीं तो शून्य और अशून्य है, बात तो एक ही है। लेकिन एक बार ज्ञान की तरफ से बात की और एक बार ज्ञेय की तरफ से बात की। पिछले जोड़े में ज्ञान की प्रधानता से कथन किया गया था और यहाँ ज्ञेयों की प्रधानता से कथन किया गया है। संपूर्ण ज्ञेयों को जानते हुए भी आत्मा में किसी भी ज्ञेय में प्रवेश न हो, किसी भी ज्ञेय का, ऐसी योग्यता आत्मा में है। ध्यान में आया ना कि वो ज्ञेय को अपने भीतर नहीं आने दे रहे, तो ये इस धर्म का नाम क्या है? शून्य धर्म। और उसको जानने वाला नए, वो शून्य नए। वो पूजा में एक पंक्ति आती है जिसमें मुझे इस नए का प्रयोग दिखता है, अशून्य नए का। कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। और उस सिमंदर पूजन में प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आंच नहीं। सारी गेयावली प्रतिबिंबित हो रही है लेकिन चैतन्य स्वभाव तो चैतन्य रूप ही रहता है। तो ये अशून्य नय का प्रयोग है भाई। अशून्य नय से देखो तो ज्ञान में लोकालोक बैठा हुआ है। ये मुख्यतया केवल ज्ञान की बात है और अपने जो स्वभाव की बात है तो लोकालोक का जानने का स्वभाव बैठा हुआ है। तो अपन कहते ना जानने का काम चालू है, लोकालोक को जानने का काम हो ही रहा है। तो जानने का स्वभाव त्रिकाल वर्तता है, ख्याल में आया ना। तो पर्याय में तो जब ज्ञान उस क्षमता से प्रकट होएगा, केवल ज्ञान वरणों विज्ञानतराय के छह से, तब वो पर्याय में वो बात प्रकट होती। तो अशून्य नए ज्ञान द्वारा ज्ञेयों को जानने की योग्यता बताता है। ज्ञेय ज्ञान में है कहा तो ऐसा जाएगा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ज्ञेयों की सत्ता ज्ञान में आ गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञेय जैसा आकार ज्ञान में है उसको उपचार से बोला ज्ञेय, तो बोलते ज्ञान में ज्ञेय भरे हुए। ज्ञान में आया ना, गजब बात। ज्ञान में तो ज्ञान ही है। वो कहते हैं ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी, 170 विधान में आता है। तीसरा जोड़ा है ज्ञान गे अद्वैत नय और ज्ञान गे द्वैत नय। अब ये तीसरे में क्या खास बात है उतनी चर्चा में करके विराम लेता हूं। पहले में ज्ञान गेयों में जाता है या नहीं, दूसरे में गे और ज्ञान में आते गे नहीं। अब वो सब निपटारा हो गया नए विवक्षा से, तो ये तो बता दो कि ज्ञान और गे भिन्न है कि अभिन्न है। तो एक द्वैत नय है और एक अद्वैत नय। तो भी गेयाकार को ही गे नाम देके गेयों से अद्वैत बोला जाता है। क्या कहा? गेयाकार को ही गे नाम देके गेयों से अद्वैत माने ज्ञान अपनी गेर जो गे को जानने वाली पर्याय है उससे भिन्न तो है नहीं, उस रूप परिणमता है, उसमें तन्मय होता है जानने में, है ना। तो जानने में परिणमत होता है और जानने में आकार कौन सा बनना है? गे जैसा। तो वो अपनी गे को जानने वाली पर्याय से तन्मय है, इसलिए गे से तन्मय है, ऐसा ज्ञान गे अद्वैत नहीं बोलता। लेकिन उस गे को गे बनाओ, बाहर वाले गे को गे नाम दो, तो ज्ञान और गे द्वैत नहीं, ज्ञान जुदा है और गे जुदा है। मैं इतना अर्थ पढ़ देता हूँ। आत्म द्रव्य ज्ञान गे अद्वैत नय से महान ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति एक है। गजब है, अग्नि और ईंधन में कोई अग्नि ही तो जलती है, ईंधन के रूप में अग्नि ही तो जल रही है, ख्याल में आए ना। तो ज्ञान गेयों को ही तो जान रहा है, तो ये उसका गेय से संबंध बन गया, ये धर्म है उसका स्वभाव। और ज्ञान गे द्वैत ने पर के प्रतिबिंबों से संयुक्त, यहाँ प्रतिबिंब ले लिया, दर्पण की भांति अनेक हैं, ख्याल में आए ना। प्रतिबिंब जुदे हैं और वो पदार्थ जुदा है और दर्पण जुदा है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, अभी का समय हो गया।
सर्वप्रथम जिनवाणी सूत्र।
जावाणी